اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ آیت 214 سے 220 تک کر رہے ہیں۔ ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا، قتال کے بارے میں بھی دیکھا، ہم نے لاسٹ ٹائم حج کا بھی دیکھا، یہ سارے مضامین ہم نے پڑھے ہیں۔ اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ جب دین کے معاملے میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں تو کس وجہ سے ہوتے ہیں، اور کن لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ آج ہم آیت 214 میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے جو ایک غلط فہمی ہوتی ہے عام معاشرے میں لوگوں کی، وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ جنت میں ایسے ہی چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جنت کن چیزوں کے سائے میں ہے، وہ بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ صدقے کے بارے میں، انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں آیات ہیں، اور اس کے بعد قتال کے بارے میں، جنگ کے بارے میں اسلام کا کیا موقف ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے۔ اس کے بعد خمر اور میسر، آج شراب اور جوئے کے اوپر بات ہوگی کہ ان کے بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، اور یہ شروع کے احکامات میں سے ہے۔ جو پہلے حکم آیا سب سے پہلے شراب اور جوئے کا، تو بالکل ایک دم حرام نہیں کر دیا گیا، کس طرح سے اس کو گریجولی کیا گیا، لیکن پہلے سے انڈیکیشنز آنی شروع ہو گئی تھی کہ یہ حرام ہو جائے گی، کیونکہ بتا دیا گیا تھا کہ اس میں گناہ ہے۔ اس کے بعد پھر یتیموں کی کچھ اس کی بات ہے، ان کے ساتھ، ان کے مال کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا آپ دیکھیں گے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سورۃ البقرہ جو ہے نا، یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور اس کے بعد یہ نازل ہوئی تھی، تو یعنی ایک طرح سے شریعت کے احکامات اب شروع ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے مکی دور میں کیا تھا، مکی دور میں تو سٹرینتھن کیا جا رہا تھا نا ایمان کو، اللہ پر ایمان کو، آخرت پر ایمان کو، رسالت پر ایمان کو، اس کو سٹرینتھن کیا جا رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو شریعت کے احکامات دیے جانے شروع ہوئے، کیونکہ اب لوگ مضبوط ہو چکے ہیں، اب لوگوں کے اندر اتنا یعنی اتنا ان کے ایمان ایسا ہے کہ اب ان کو جو حکم دیا جائے گا وہ اس کو مانیں گے۔ تو پہلے ان کو پریپیئر کیا گیا مکی دور میں، اور اس کے بعد اب یہ سورہ بقرہ میں گریجولی احکامات آ رہے ہیں، شریعت کے احکامات، اور لوگ لینے کو اب تیار ہیں، کیونکہ ان کی ایک سمجھ لیں مائنڈ سیٹنگ ہو چکی اب۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے نا اس صورت کو، تو پھر اور بھی آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی۔ اور دوسری یہ دیکھیں گے آپ کہ بار بار احکامات یعنی بدل بدل کے آ رہے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے آپ کو یہ عجیب لگے کہ دیکھیں ابھی قتال کا آیا، پہلے ہم نے قتال کا پڑھا تھا، بیچ بیچ میں کچھ اور آ گیا، پھر آپ نے دیکھا روزے کا آیا تھا، پھر قتال کا آیا، پھر حج کا آیا، پھر اس کے بعد پھر تھوڑے سے قتال کے احکامات آ رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو کھانے پینے کا ہے وہ آ رہا ہے، یعنی خمر جو ہے وہ شراب پینے کی چیز ہے نا، اور میسر کے بارے میں آ رہا ہے۔ حرام چیزوں کا تو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ وہ خنزیر بھی حرام ہے، اور جو کہیں اور جا کے کسی اور کے نام پہ دیا جائے وہ بھی حرام ہے، اور یہ چیزیں ہم نے پڑھی تھی کہ یہ حرام کی کیٹیگری میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں۔ تو پھر شراب کو تو وہاں آنا چاہیے تھا، تو پھر یہ یہاں پہ کیوں آ گئی؟ تو یعنی ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر قتال کی بھی اگر کوئی بک لکھی ہو یا کوئی ایسے علمی آپ چیز پڑھیں، تو اس میں کیسے انداز کیسے ہوتا ہے، ایک ٹاپک آتا ہے تو وہ ٹاپک پورا کمپلیٹ ہوتا ہے، پھر دوسرا ٹاپک سٹارٹ ہوتا ہے، رائٹ؟ لیکن قرآن پاک میں ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں آپ نے ابھی وہاں پہ کھانے پینے کا پڑھا، پھر یہاں پہ کھانے پینے کی بات آئی، پھر اس کے بعد یہاں پہ ارتداد کی بات آ گئی، یعنی مرتد ہونے کی بات آ گئی، اس سے پہلے بھی ہم نے ایک دفعہ مرتد ہونے کی بات پڑھی تھی۔ اسی طرح پھر آگے آپ یتیموں کے بارے میں بات پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ آئلی زندگی جو آپ کی فیملی لائف ہے، فیملی لائف کے بارے میں پھر آپ پڑھیں گے، نکاح ہے، طلاق ہے، عدت ہے، ان چیزوں کے بارے میں، کن کن سے نکاح ہو سکتا ہے، کیا وہ سب چیز ہم انشاءاللہ تعالی آگے پڑھنے والے ہیں۔ تو یہ کیوں اس طرح سے آ رہے ہیں پھر پھر کے، یعنی آگے پیچھے مضامین کیوں ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ اگر دیکھیں مسلسل ایک ہی بات چلتی رہے تو کیا ہوتا ہے، انسان کی طبیعت پہ نا وہ ذرا یعنی بھاری ہوتا ہے، وہ چیز لینا۔ अगर एक टॉपिक आए, फिर दूसरा आए, फिर तीसरा आए, फिर चेंज आ गई, फिर चेंज आ गई, तो फिर क्या होता है, इंसान को वो लाइट फील होता है। सही है ना? तो कुरान पाक का मकसद सिर्फ आपको एक बम्बारमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन देना नहीं है कि बस इंफॉर्मेशन के एक बस सैलाब आया हुआ और वो बस आपको दी जा रही है, नहीं, बल्कि कुरान का मकसद क्या है, आपकी सोच को बदलना। इसलिए इस तरह के अंदाज को इख्तियार किया गया, ठीक है। और सूरतुल बकरा क्या है, समझ लें, सूरतुल बकरा शरीयत जो है, इस्लामिक शरीयत ने ना, देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि मदनी दौर में सबसे पहले तो ये वाले अब शरीयत के अहकामात स्टार्ट हो रहे हैं। अभी मक्की दौर में तो ये शरीयत नहीं थी कि क्या चीज़ हराम है, शराब हराम है या जुआ हराम है या ये हराम, ये चीज़ें नहीं थी, या क्या खाना है और क्या नहीं खाना, इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं थी, ना किताल के ऊपर बात थी, ना इस तरह से रोज़ों की फर्जियत थी, ना ऐसे हज के अहकाम दिए गए थे। तो ये अहकाम अभी दिए जा रहे हैं। तो समझ लें कि एक जो जैसे एक बिल्डिंग आपने बनानी है तो उसका पहले नक्शा बनाया जाता है ना, समझ लें कि वो ये वो नक्शा है, डिज़ाइन किया गया पहले, ठीक है। तो सूरतुल बकरा इसकी आउटलाइन है शरीयत की, समझ लें। फिर उसके बाद आगे इन चीज़ों की डिटेल्स, जैसे आपने विरासत के अहकाम पढ़े, अब थोड़ी सी उसको टच किया गया, फिर उसके बाद आ गए क़िसास के मामलात पढ़े, ये ना माशरती ज़िंदगी के हैं। तो उसके बाद डिटेल्स आएंगी आगे, अब विरासत के अहकाम पे बहुत सारी डिटेल्स आएंगी, लेकिन अभी इनकी सिर्फ आउटलाइन है, ये समझ लें आप, सही है ना। और मैंने आपको क्या बताया था कि अब ये उम्मत वसत को जो अहकाम दिए जा रहे हैं, इनमें क्या है, चार जो टॉपिक्स हैं वो बार बार आएंगे, फोर टॉपिक्स ही हैं जो कवर होंगे, उन्हीं के दायरे के अंदर ही हम घूम रहे हैं, बार बार उन्हीं टॉपिक्स में से कोई आयतें आ रही हैं। नंबर वन टॉपिक क्या है, इबादत, जैसे हमने हज का पढ़ा, रोज़े का पढ़ा, फिर नमाज वगैरह का भी, ज़कात का भी, इस तरह से पढ़ते जा रहे हैं, तो वो है इबादत हो गई। फिर मामलात, मामलात में क्या है, मामलात में ये डीलिंग्स हैं, जैसे कि अभी आप ये अब आगे निकाह का भी पढ़ेंगे, तलाक का भी पढ़ेंगे, फिर आप जैसे ये यतीमों के बारे में है, या ये आपने क्या खाना है, या ये सब चीज़ें, अब आप उसको इबादत में डाल लें, खाने पीने को, या मामलात में डाल लें। अच्छा, फिर थर्ड चीज़ जिहाद फी सबीलिल्लाह, जिहाद फी सबीलिल्लाह के अंडर ही ये दोनों चीज़ें आती हैं, इन्फाक फी सबीलिल्लाह और किताल, ठीक है। तो वो दो टॉपिक अलग हैं जो इसमें आएंगे। तो आप देखेंगे फिर के वही आ रहे हैं, सो डोंट गेट लॉस्ट कि पता नहीं हम कहाँ फिर रहे हैं और कभी कुछ हो रहा है और कभी कुछ हो रहा है, तो आपका माइंड लॉस्ट नहीं होना चाहिए, बी फोकस्ड, और ये जान लें कि यही टॉपिक्स बार बार आ रहे हैं और किस तरह फिर के आ रहे हैं, फिर के आ रहे हैं, तो उनकी ब्यूटी को समझें आप, ठीक है, फिर ही आप अप्रिशिएट कर सकेंगे, अदरवाइज आप बिल्कुल गुम ही हो जाएंगे कहाँ सूरह बकरा, क्योंकि इतनी सुबहान अल्लाह ये लंबी सूरत है ना, तो फिर जब इंसान ऐसे लॉस्ट हो जाता है तो वो उसको समझ ही नहीं आती कि क्या आ रहा है तो क्या जा रहा है, फिर वो बिल्कुल उसका माइंड फोकस नहीं रहता। तो आप फोकस करें, और जब आप इन फोर हेडिंग्स के अंडर आयतों को लिख लेंगे ना कि ये आयत इस हेडिंग के अंडर आ रही है, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको समझने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے یعنی ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے حالانکہ نہیں آئی تمہارے پاس مثال مثال کا مطلب کیا ہے یعنی ایسے حالات نہیں آئے الذين خلوا من قبلكم جو ان لوگوں پہ گزرے تھے جو تم سے پہلے آئے اب ایک خوش فہمی کہہ لیں یا غلط فہمی کہہ لیں عام انسانوں کو یہ تھوڑی سی ہو جاتی ہے تھوڑی سی نیکی کے چند ایک کام کر کے کہ بس اب تو جنت ہماری ہی ہے جنت ہماری ملکیت ہے اب جنت میں جانا تو ہمارا بن گیا اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کو کلیئر کر دیا اور بہت ایک طرح سے سمجھ لیں ہمارے لیے ڈرا دینے والی آیت ہے کہ تم نے ایسے ہی سمجھ لیا کہ تم بیٹھے بٹھائے جنت میں چلے جاؤ گے ابھی تک تو تمہارے پر وہ حالات ہی نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پہ گزرے تھے تو پہلے لوگوں پہ کیا حالات گزرے تھے क्या हुआ था उनके साथ ऐसा जो अभी तुम्हारे पर तो आया ही नहीं है, जिसको यहां कहा गया मसत हुमुल बासा वद्दरा, उनके ऊपर उनको पहुंची बासा सख्तियां और दर्रा मुसीबतें, उनके ऊपर तो बहुत मुसीबतें आई, बहुत सख्तियां आई, बहुत तकलीफें आई और इतनी तकलीफें आई। वह जुलजिलू, और वो हिला मारे गए, उनको तो हिला मारा गया था, उनकी तो हालत ये थी कि वो तो पूरी तरह शेक कर दिए गए थे। इस तरह से हिला मारा जाने का मतलब क्या है, इतनी ज्यादा उनके ऊपर सख्ती आई, जैसे इंसान हिल जाता है ना, कोई बहुत बड़ा सदमा, कोई बहुत बड़ी तकलीफ आए। हत्ता यकूल रसूल, हत्ता के इतनी तकलीफ आई कि रसूल तक पुकार उठे, चीख पड़े, क्या और वल्लदीन आमनु, और ईमान वाले भी। अब रसूलों का तो हालांकि हिम्मत कितनी ज़्यादा होती है, लेकिन वो तक भी बोल उठे, और ईमान वाले भी, मा आहू जो साथ थे उसके, उसके किसके, हु की ज़मीर किस तरफ जा रही है, रसूल के ना, जो उनके साथ थे, रसूल के साथ थे, ईमान वाले भी और रसूल भी। उन्होंने क्या बोला, इसको इन्वर्टेड कॉमास में कर ले, मता नसरुल्लाह, ये उनकी, यानी जब आप ऊपर इन्वर्टेड कॉमास लगा लेंगे ना, ये उनकी स्टेटमेंट है, किसकी, रसूल की और ईमान वालों की, मता नसरुल्लाह, कब आएगी अल्लाह की मदद। यानी इतने ज़्यादा वो टॉर्चर दिए गए, मुसीबतें उनके ऊपर आई, सख्तियां उन पे आई कि उन्होंने कहा कब आएगी अल्लाह की मदद। समझ रहे हैं आप बात के, किस कितनी उनकी डेस्परेशन हो गई। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अला, तब अल्लाह ने फरमाया सुन लो, इन्ना नस्रुल्लाह करीब, बेशक अल्लाह की मदद जो है वो करीब ही है, बस आई चाहती है, बस पहुंचने वाली है। तो आयत हमें क्या बताती है, आयत हमें ये बताती है कि तुमने ऐसे ही समझ लिया है कि तुम इतने आराम से चले जाओगे जन्नत के अंदर। देखो पुराने लोगों ने, जो पहली उम्मतें गुजरी हैं, अब हमें तो देखे सबकी हिस्ट्री नहीं ना पता, चीदा चीदा कौमों के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताया है, लेकिन हमें नहीं पता कि लोगों के साथ क्या गुजरा, जब वो ईमान लाते थे तो क्या होता था, मुझे आपको नहीं पता। सदियां गुजरी, लोग तौहीद के ऊपर आए शिर्क छोड़ के, तो उस वक्त क्या हालात होते थे उनके साथ, पता है कोई आपको, नहीं पता ना। अल्लाह ताला ने यहाँ पे बताया कि उन्होंने बड़े सख्त हालात देखे, बड़े सख्त हालात देखे, ताकि वो चीख पड़े कब आएगी अल्लाह की मदद। तो तुम सोचते हो कि बस जन्नत इतनी आसान है, बगैर आजमाइशों के मिल जाएगी, बगैर मुशक्कत के मिल जाएगी, बगैर कोई मुश्किल उठाए मिल जाएगी, बस बैठे बिठाए, नहीं, जन्नत की कीमत देनी होगी। और जन्नत की कीमत क्या है, क्या है जन्नत की कीमत, कि ऐसी आजमाइशों की भट्टी से तुम्हें गुजरना पड़ेगा, यू विल बी टेस्टेड, और टेस्ट कैसे होगा, मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, तकलीफें आएंगी, तुम हिला मारे जाओगे। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत का रास्ता मुश्किलात से ढांप दिया गया है। या और इंसान देखें, जन्नत में हम सारे जाना चाहते हैं, किसी को भी सुन लें आप, इवन गैर मुस्लिमों से देखें, वो भी कहते हैं कि हमने हेवन पैराडाइज, इसका उनके अंदर कॉन्सेप्ट है, हर कोई जाना चाहता है, अपने मरे हुए लोगों को कहते हैं वो जन्नत में ही गए हैं। लेकिन क्या किसी ने सोचा कि इसके रास्ते पे भी चलना पड़ेगा, और उसका रास्ता आसानियों वाला नहीं है। हम सब इतने सहल पसंद है ना, इजी चीज़ चाहते हैं, कि हम सच चाहते हैं बस आसानियाँ ही आसानियाँ मिले, कुछ ना करना पड़े हमें। तो कुछ ना करके जन्नत नहीं मिलती, जन्नत के लिए ज़िंदगी को, लाइफस्टाइल को बदलना पड़ता है, मुश्किलात को बर्दाश्त करना पड़ता है, तंगी और मुसीबत में सब्र करना पड़ता है, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना पड़ता है। इतनी भी मुसीबतें आ जाएं कि इंसान हिल जाए, जलजला आ जाए उसके अंदर, तब भी दीन को नहीं छोड़ना। और हम 21st सेंचुरी में सोचते हैं लोग कुछ तो, ये अगर कोई दीन की वजह से कोई मुश्किल आ गई लो भाई हम तो दीन की तरफ आए थे, मतलब हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है ना कि हम तो आए हैं तो इसके बाद तो हमें लोग फूलों के हार पहनाएं और कहीं तख्त पे बिठा दें कि आपने तो बड़ा अच्छा काम किया, तो हम तो हक की बात कर रहे हैं, यानी हम अल्लाह पे ईमान लेकर आए हैं, तो अब भी इसका मतलब तो ये है कि अब तो हमें यानी क्या बड़े बड़े इनाम मिलने चाहिए, वो यहाँ नहीं मिलने, वो वहाँ मिलेंगे। यहाँ पे तो आजमाइश आएगी भाई, आजमाइश के बगैर आप कैसे सोच सकते हैं कि पता चले कि आपका ईमान किस लेवल का है। देखिए सच और झूठ का फैसला कैसे होता है, कैसे पता चलता है कि कोई कितना स्ट्रॉन्ग है अपने दावे में। आपको कोई बहुत बातें करे तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये सच्चा है कि झूठा है, टेस्ट से पता चलता है ना, इम्तिहान लेने से। तो अल्लाह ताला भी इम्तिहान लेगा। जन्नत की ख्वाहिश ज़रूर रखो, मगर साथ ये याद रखना कि जन्नत के रास्ते पे चलने वालों को आज़माया जाता है। जैसे सूरतुल अनकबूत में अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वो इतना बस कहने पे छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए। हम सब ने वाकई ये समझ रखा ना, क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वो इतना कहने पर बस छोड़ दिए जाएंगे कि वो ईमान लाए और उनको आज़माया नहीं जाएगा। हालांकि इन सब लोगों की हम इन सब लोगों की आजमाइश कर चुके हैं जो इनसे पहले गुजरे। यानी अल्लाह ताला की ये सुन्नत है, अल्लाह का तरीका है, वो आजमाता है। सिर्फ तुम्हारा ये टेस्ट नहीं होगा, जो तुमसे पहले गुजरे थे उनका भी टेस्ट हुआ था और अल्लाह ताला ने देखा था कि कौन कितने पानी में है। सच्चे और झूठे का पता वरना कैसे चलेगा। अब देखें सही हदीस में आता है, एक दफा हजरत खब्बाब बिन अरत उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारी मदद की दुआ नहीं करते। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के साथ हदीस में आता है कि टेक लगाए बैठे थे, तो ये हजरत खब्बाब आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। और पता है आपको कि हजरत खब्बाब कौन है? ये हजरत खब्बाब बिन अरत जो है ना, इससे अंदाज़ा करें, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब जब अमीरुल मोमिनीन बने तो उनके पास तशरीफ़ लाए थे, तो हज़रत उमर ने इनको अपनी ख़ास मसनद पे बिठा के फरमाया, एक आदमी के अलावा रूए ज़मीन का कोई आदमी इस मसनद पर बैठने का तुमसे ज़्यादा हकदार नहीं है। तो हज़रत खब्बाब ने उनसे पूछा, अमीरुल मोमिनीन वो एक आदमी कौन है? फरमाया, वो बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। हज़रत खब्बाब ने कहा, नहीं वो मुझसे ज़्यादा हकदार नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझसे ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं उठाई, क्योंकि मुशरिकों में हज़रत बिलाल के मुतल्लिक ताल्लुक वाले ऐसे लोग थे जिनकी वजह से अल्लाह ताला उनको बचा लेते थे, मेरा तो उनमें कोई ऐसा था ही नहीं जिसकी वजह से मुझे बचाया जाता। मैंने अपना ये हाल देखा है कि एक दिन मुशरिकों ने मुझे पकड़ा और आग जला के मुझे इसमें डाल दिया, फिर एक आदमी अपना पाँव मेरे सीने पर रख के और खड़ा हो गया और मैं उस ज़मीन पर सिर्फ अपनी कमर के ज़रिए ख़ुद को बचा सका। फिर हज़रत खब्बाब ने अपनी कमर खोल के हज़रत उमर को दिखाई, जिस पर ऐसे बर्स के निशान जैसे निशान थे, जैसे वाइट हुई होती है ना, जैसे जो बर्स के मरीज़ होते हैं उनकी जैसे होता है, इस तरह से इनके निशान थे। और वो किस वजह से थे? कोयले दहका के इनको उसके ऊपर, कोयलों के ऊपर लिटाया जाता था और आदमी इनके ऊपर खड़ा हो जाता था, और उसके बाद इनका हाल ये होता था कि हिल भी नहीं सकते थे। वो कोयले ठंडे पता है कैसे होते थे? जो चर्बी पिघलती थी इनकी कमर से, वो पड़ती थी उन कोयलों पे, तो तब ठंडे होते थे वो कोयले। इतनी ज़्यादा तकलीफ दी गई इनको, तो इतनी तकलीफ़ें सहने पर ये फिर तब आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और फरमाने लगे, आप हमारी मदद की दुआ नहीं करते, आप अल्लाह से दुआ नहीं मांगते कि अल्लाह हमारी मदद करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे से टेक लगाए बैठे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे हो गए, फरमाया बस अभी से घबरा उठे, सुनो तुमसे अगले जो थे ना तौहीद वाले, उनको पकड़ के उनके सरों पर आरे रख दिए जाते थे और चीर कर दो टुकड़े कर दिए जाते थे, लेकिन वो तौहीद से हटते नहीं थे। क्या किया जाता था? ज़मीन खोदी जाती थी, गड़ा बनाया जाता था और उसके अंदर आदमी को खड़ा कर दिया जाता था, यानी कमर तक उसके मट्टी आ रही होती थी, ठीक है, और बीच में खड़ा करके, और फिर उसके बाद अब वो हिल तो सकता नहीं है, सही है ना, उसके सर के ऊपर आरा रख के और उसको बीच में से दो टुकड़े कर दिया जाता था। सिर्फ किस लिए? कि वो एक अल्लाह के मानने वाले थे, मगर फिर भी वो गिव अप नहीं करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोहे की कंघियों से, जैसे कंघी होती है ना लोहे की होती थी, उनसे उनके गोश्त नोचे जाते थे, लेकिन वो अल्लाह के दीन को नहीं छोड़ते थे। यानी कंघियाँ उनके जिस्म के अंदर डाल दी जाती थी और फिर उनको फेरा जाता था, और फिर भी वो अल्लाह के दीन को नहीं छोड़ते थे। अल्लाह अकबर। और लोगों को आग में भी डाला जाता था, जैसे आपने सूरतुल बुरूज में पढ़ा होगा खंदक वालों की बातें, कि खंदकें खोदी जाती थी और आग लगा दी गई उसमें और लोगों को उसके अंदर फेंक दिया गया। और कैसे फिरौन की जो बेटी की बांदी थी उसको कैसे दहकते हुए तेल के अंदर उसको और उसकी बच्चियों को डाल दिया गया। तो पिछले लोगों ने बड़ी मुशक्कतें उठाई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम अल्लाह की इस मेरे दीन को तो मेरा रब इस कदर पूरा करेगा कि बगैर किसी खौफ और ख़तर के सनआ से हज़रे मौत तक सवार तन्हा सफ़र करने लगेगा और उसे सिवाय अल्लाह के किसी का डर नहीं होगा। फरमाया, अफसोस है तुम जल्दी करते हो। यानी वो कोयलों के ऊपर उनको लिटाया गया तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं तुम जल्दी करते हो, एक वक्त ऐसा आएगा इस्लाम इतना यानी पावरफुल हो जाएगा, इतना ज़्यादा इस्लाम का बोलबाला हो जाएगा, इस्लाम ऐसा गालिब हो जाएगा कि एक आदमी एक सवार अकेला सफ़र करेगा, उसको सिवाय अल्लाह के किसी का डर नहीं होगा। लेकिन तुम जल्दी कर रहे हो। आज देखें, एक बहुत सालों पहले की एक कोई न्यूज़ थी, कोई इस तरह थी, मुझे अभी याद भी नहीं, तो फ़लस्तीन की एक औरत को दिखाया गया था जिनके घरों को भी वो बिल्कुल फ्लैट कर दिया गया और बहुत ही उनके पर मजालिम हुए, तो वो हाथ उठा उठा के कह रही थी कि अल्लाह तू कहाँ है, अल्लाह तू कहाँ है। वो बहुत ही मतलब दिल दहला देने वाली थी वो वीडियो जो थी उसकी, कि वो ऊपर आसमान की तरफ देख देख के और हाथ उठा उठा के ऐसे फरियादें कर रही थी। तो जब मजालिम आते हैं लोग ऐसे करते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खब्बाब को भी फरमाया कि अफसोस है तुम पे खब्बाब के, तुम जल्दी कर रहे हो। ये यानी इसको भी जल्दी कहा, तुमसे पहले लोगों ने तो इतने ज़्यादा मजालिम सहे, तुम इतने पे ही तुम्हारी बस हो गई। आज सोचे हमारा हाल क्या है, हम सारे जन्नत के उम्मीदवार हैं लेकिन हमें कांटा भी चुभता है ना तो हम फौरन गिव अप करने को तैयार हो जाते हैं, कांटा भी चुभता है। एक लड़की ने बताया कि वो उसको जॉब नहीं मिलती थी क्योंकि वो हिजाब लेके जाती थी इंटरव्यू देने के लिए, तो उसने कहा कि इसलिए मुझे हिजाब ही छोड़ना पड़ा क्योंकि फिर इस तरह तो मुझे जॉब ही नहीं मिलेगी। बाज़ लोग ऐसे हैं कि वो अपने नाम ही बदल देते हैं, कहते हैं मोहम्मद और अहमद नाम देख के तो देखें फिर हमें मुश्किलात होती हैं एयरपोर्ट्स पे इस तरह जॉबों वगैरह में, तो उन्होंने अपने नाम ही बदल के, कोई किसी ने जॉर्ज रख लिया, जिम रख लिया, टिम रख लिया, चलो ताकि हम गुल मिल जाएं, हमारा पता ही ना चले हम मुसलमान हैं। और कुछ लोगों को देखा गया वो इतनी इस पर शिकायत करते हैं, हम तो जब से बस दीन की तरफ आए ना हमारा तो कारोबार में ही बड़े मसले आने शुरू हो गए, बजाय इसके कि हमें तरक्कियां मिलती तो हमारा तो उलट ही हो गया। यानी हम सोचते हैं ना कि ये दीन की तरफ आने का मतलब ये है कि हमें बस कितने हार पहनाए जाएँ और हमारी तो बस तरक्की हो जाए। नहीं, दीन की तरफ आओगे तो आज़माए जाओगे, और जो जितना ज़्यादा ईमान में मजबूत होगा वो उतना ही ज़्यादा आज़माया जाएगा। सबसे ज़्यादा तो अंबिया कराम आज़माए गए, देखें सबसे ज़्यादा उनकी आज़माइश हुई, और हम इतनी छोटी छोटी बातों के ऊपर और हमारे रोने होते हैं कि हम पता नहीं हमारे साथ कितना जुल्म हो गया। देखें इन लोगों को कैसे आजमाए गए, कैसे झंझोड़े गए, और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। लोग अलग अलग हो जाते हैं ना, ईमान वाले अलग और मुनाफिक अलग, तो वो तो ऐसे थे कि वो कहते थे अल्लाह की मदद कब आएगी, तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरी मदद करीब ही है। लेकिन ये मदद किन के लिए होती है? जो साबित कदम तो रहें, जो हिम्मत तो ना हारें, जो चलते तो रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदे जब ना उम्मीद होने लगते हैं तो अल्लाह ताला हैरान होता है, ताज्जुब करता है कि मेरी फरियाद रसी तो आ पहुंचने को है और ये ना उम्मीद होता चला जा रहा है। बस अल्लाह ताला उनकी जल्दी और अपनी रहमत के कुर्ब पर हंस देता है कि ये इसने इतनी जल्दी मचाई हुई, मेरी रहमत तो बस पहुँचने ही वाली है। अब देखिए हम छोटी छोटी मुश्किलों पर कितने एकदम वो बिल्कुल बेसब्रे हो जाते हैं और ना उम्मीद होना शुरू हो जाते हैं, बस अब तो कुछ होगा ही नहीं, हाय अब तो मेरा तो कुछ हो सकता ही नहीं है। तो अल्लाह ताला हैरान होती कि ये मेरी तो बस रहमत आने ही वाली थी और ये मायूस होना शुरू हो गया और इसने कितनी जल्दी मचा दी है। तो देखें आप इससे अंदाजा करें कि वो खब्बाब उस वक्त आए रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उस वक्त आए जब अंगारों से उनका जिस्म कैसा हो चुका था और उनकी कमर कैसी हो चुकी थी, उस वक्त वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो उसको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दी फरमाया। तो हमारे और आपके हालात तो अल्लाह माफ़ करे कोई ऐसे नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया की मिठास आखरत की कड़वाहट है, याद रखें, और दुनिया की कड़वाहट आखरत की मिठास है। यानी आज अगर तकलीफ़ें आती हैं, तलखियाँ आती हैं, मुश्किलें आती हैं और उनको बर्दाश्त करना पड़ता है तो कल की मिठास मिलेगी। और ये तीन मोड़ ऐसे हैं ना, बासा यानी माली मुश्किलात ज़्यादा इसके अंदर माना है, दर्रा में मुसीबतें यानी तकलीफ़ जो भी सदमा इंसान को कोई पहुँचे, या जहनी जिस्मानी फिज़िकल भी हो सकती है यानी जैसे बीमारियां वगैरह हैं या ऐसी कोई इंसान का कोई ज़ख़म ऐसा हो जाता है, कोई ऐसी तकलीफ़ आ जाती है, या कोई जहनी सदमा, कोई टेंशन्स, कोई परेशानियां ऐसी हो जाती हैं, इनसे भी अल्लाह ताला इंसान को आज़माता है। और जलजाल तो है ना, वो जलजला जो अंदर आ गया कि इंसान इतना ज़्यादा शेक हो जाता है कि वो सोचता है अब मैं इस रास्ते पर चलूँ भी कि ना चलूँ, मेरे ऊपर तो इतनी मुसीबत आई है इस रास्ते पर चलने की वजह से। लेकिन याद रखिएगा जन्नत इन्हीं की छाँव में है, इसी के से मिलती है जन्नत। जन्नत भी तो आसान नहीं है। और क्या सहाबा पे नहीं ये पहाड़ टूटे, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नहीं टूटे? और सबसे ज़्यादा तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सख्त दिन था वो कौन सा दिन था, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सख्त तरीन दिन जो मेरे ऊपर आया वो ताइफ का दिन था, जिसमें दो दिन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो गुजरी वो इतनी शदीद मुसीबत थी कि हत्ता के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो फरियाद जो अल्लाह ताला से की थी कि अल्लाह मैं तेरी जनाब में फरियाद लेके आया हूँ अपने वसाइल की कमी के और कुव्वत की कमज़ोरी के, तूने मुझे किसके हवाले कर दिया, मुझे तूने ऐसे दुश्मन के हवाले कर दिए कि जो चाहे मुझसे कर गुजरे। इसलिए कि उनके ओबाश नौजवान, पहले तो उन्होंने आवाज़ें कसनी शुरू की, पहले उन्होंने तंग करना शुरू किया, फिर तो उसके बाद ये हाल हो गया था कि रास्ते के दोनों तरफ खड़े हुए थे और पत्थर मार रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ हज़रत ज़ैद थे, वो कवर करने की कोशिश कर रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन एक बंदा कितना साथ दे सकता है, कितना कवर कर सकता है। तो फरमाया तूने मुझे ऐसे दुश्मन के हवाले कर दिया जो चाहे मुझसे करे, ऐ अल्लाह अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं है तो मुझे कोई परवाह नहीं है। यानी उनको ये डर है उस पर भी कि अल्लाह तू तो नहीं कहीं मुझसे नाराज़ हो गया, मैं तो तेरे ही चेहरा अनवर के नूर की पनाह में आता हूँ। सुभान अल्लाह। और इज्तमाही तौर पे भी मुसलमान आजमाए गए, जब गजवा आज़ाब था और दुश्मन आके बाहर बैठा हुआ था और खंदकें खोदी हुई थी और ये अंदर थे, उस वक्त ये हाल था जो सूरह आज़ाब में इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो हम पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस वक्त ये हाल था मुसलमानों के, तुम्हारे दिल तुम्हारी हंसलियों तक आ पहुँचे थे और तरह तरह के गुनमान तुम्हारे दिलों में पैदा हो रहे थे। उस वक्त इंसान सोचता है ना अगर ये वाकई सच्चा दीन है तो फिर ये हाल है, फिर अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? तो उस वक्त मुनाफिक बोल उठे थे कि ये तो अल्लाह के रसूल के वादे तो बिल्कुल झूठे हैं, ये तो फरेब था। लेकिन उस वक्त ईमान वालों ने कहा था यही तो है جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا. اور وہ کیا وعدہ ہے؟ کہ آزمائشیں آئیں گی, مشکلیں آئیں گی. ہم نے پڑھا ہے نا پہلے کہ اللہ تمہیں آزمائے گا خوف سے بھی, جوع سے بھی, نقص من الاموال سے بھی, اور جانوں کے نقصان سے بھی, ثمرات سے بھی, سب سے آزمائے گا اللہ تعالیٰ تمہیں. تو یہ تو آزمائش آ گئی. ہم تو نہیں کبھی ایسے سوچتے کہ اللہ نے تو واقعی فرمایا ہے قرآن میں کہ آزمائش آئے گی, تو میرے اوپر تو یہ آزمائش آئی بھی ہے. یہ آزمائش ہے میری, مجھے اس میں ثابت قدم رہنا ہے. انسان کہیں اولاد سے آزمایا جاتا ہے, کہیں گھر والوں سے آزمایا جاتا ہے, کہیں شوہر سے آزمایا جاتا ہے, کہیں مال کی آزمائش آتی ہے, کوئی اور کسی طرح سے آزمائش آ جاتی ہے, بیماری یا ایسی صورت میں, کسی تکلیف کی صورت میں. تو آزمائشیں آئیں گی, ضرور آئیں گی. تم سوچتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی دیکھا ہی نہیں تم میں سے کون جہاد کرنے والے ہیں اور کون صبر کرنے والے ہیں. یہ سورہ آل عمران میں آیا ہے. اللہ دیکھے گا صبر کرنے والے کون سے ہیں, یہ صبر کرتے بھی ہیں یا نہیں. تو ہمارا تو صبر ابھی چیک ہی نہیں ہوا. اب میں اپنے آپ کو جتنی مرضی صابرہ اور شاکرہ کہتی رہوں کہ میں بڑی صبر کرنے والی, شکر کرنے والی ہوں, پتہ کیسے چلے گا جب تک آزمائش نہیں آئے گی. تو ابھی تو سب لوگ ایک ساتھ گھلے ملے رہتے ہیں نا, جو کمزور ایمان والے ہیں, جو پکے ایمان والے ہیں, جو منافق ہیں, جو سب سارے ملے جلے رہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ یاد رکھے, ایسے چھوڑے گا نہیں, وہ الگ الگ کر دے گا. اسی دنیا میں اللہ الگ الگ کر دیتا ہے کہ پتہ چل جائے کہ کون ہے پکا سچا اور کون ہے جو ایسے ہی ایمان کے دعوے تو کر رہا ہے لیکن کچھ نہیں اس میں. تو سوچ لیں کہ جو لوگ جم جاتے ہیں نا وہی منزل کو پہنچتے ہیں. دیکھیں جو درخت جمے رہتے ہیں نا آندھی اور طوفانوں میں, سخت ہواؤں کے تھپیڑوں میں, جو کھڑے رہتے ہیں وہی زندہ رہتے ہیں. اور جو تھوڑی سی بس آندھی چلی اور گر گئے وہ ختم ہو گئے, ٹوٹ گئے. تو دیکھ لیں کہ جب ٹیسٹ آتا ہے نا تو تبھی پتا چلتا ہے کون سا درخت ہے جو کھڑا رہنے والا ہے اور کون سا درخت ہے جو گر جانے والا ہے. تو ہماری آزمائشیں ہوتی ہیں, اس کو پہچانیں, ٹیسٹ سے گھبرائیں نہیں. ہمارا تو اتنا سا ہی ٹیسٹ ہو جاتا ہے, یہ بھی ٹیسٹ ہو گیا کہ قرآن کی طرف اس لیے نہیں آتے کہ ٹیسٹ دینا پڑے گا. لے آپ کا تو ٹیسٹ یہیں پہ ہو گیا, پڑھنا پڑے گا نا. یا پھر شاید یہ مسئلہ ہے کہ لوگوں کے سامنے میری کیا عزت رہے گی. وہ جھوٹی انائیں اور جھوٹی عزتوں انہی کے خول کے اندر جیتے رہتے ہیں, بس کہ ہماری عزت اونچی رہے, نام اونچا رہے, کہیں یہ نہ ہو کہ ہم بے عزت ہو جائیں. کم نمبر آ گئے تو کیا ہوگا, اتنی سی آزمائش میں ہی فیل ہو گئے کیا. شوق سے پڑھنا شروع کرتے ہیں, بس ذرا سا ٹیسٹ آیا تو ہائے 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 ہائے, اچھا ٹیسٹ بھی دینا پڑے گا, او پوری زندگی ٹیسٹ دینا ہے. ہم تو سوئے ہوئے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹیسٹ بھی ہے. کبھی اس سوچ کے ساتھ زندگی گزاری ہے کہ مجھے ٹیسٹ دینا ہے؟ ہم اتنی آسانی پسند ہو گئے ہیں نا کہ ٹیسٹ کا نام سنتے ہی جانیں ہوا ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے, ٹیسٹ کی ایک پریشانی فکر ہونی چاہیے, لیکن ایسے نہیں کہ ٹیسٹ سے بھاگنے لگے, کیونکہ ٹیسٹ تو آئیں گے. اگر یہ ٹیسٹ نہ ہوں گے تو ہمارا پتہ کیا چلے گا. ہم بس حج کر کے, عمرے کر کے, اور ہم بس دو چار نمازیں پڑھ کے بس یہی سمجھ لیں گے کہ ہم تو جنت, بس جنت میں جانے والے, تو یہ خوش فہمی دور کر لیں. ٹیسٹ آئے گا, ٹیسٹ میں جو پاس ہوگا نا وہی جائے گا. تو یہ لکھ لیں اپنے لیے, اپنے پاس بات, کہ ایمان والے کے لیے لازمن لازمن ابتدا اور آزمائش آئے گی, اور اس آزمائش میں اگر پاس ہو گئے تو مقام اونچا ہو جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کتنے امتحان آئے، کتنے امتحان آئے. کیا اللہ تعالیٰ ان کو ناپسند کرتے تھے؟ اعوذ باللہ، نہیں، ایسا تو نہیں ہے. کیوں آزمائے گئے؟ اللہ نے ان کے درجے بلند کرنے تھے، آزما کے ان کو اوپر 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 کے درجے دینے تھے. آزمائشیں تو انبیاء پہ بھی آئی ہیں، ہم کیسے رہ جائیں گے؟ حالانکہ ان کے ایمان کا تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، مگر ان کے درجے بلند کرنے ہیں نا. تو اپنے پاس لکھ لیں کہ جو جنت ہے اس کا راستہ بأسا اور درا اور زلزلو، ان کے اندر چھپا ہوا ہے، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں اور ہلا دیے جانے والے حالات میں. اور جنت ثابت قدمی کا صلہ ہے. جو بھی مشکل راستے میں بھی چلتا چلا جائے گا، چلتا چلا جائے گا، گیو اپ نہیں کرے گا، رکے نہیں کرے گا، وہی جنت تک پہنچ سکے گا. کئی بار سفر بہت لمبا ہوتا ہے اور بہت مشکل ہوتا ہے، اتنی برداشت بھی نہیں ہوتی انسان میں، وقت بھی بہت کم ہوتا ہے. پھر انسان سوچتا ہے کہ نہیں، مجھے چلتے رہنا ہے، رک نہیں سکتے، اگر میں رکی تو میں پہنچ نہیں سکوں گی. تو یہی حال اس راستے کا جو جنت کا راستہ ہے، کہ ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم نے رکنا بھی نہیں ہے، راستہ بھی مشکل ہے، لمبا بھی ہے، ہمیں برداشت کرنا ہے اور اسی پہ چلنا ہے. آپ دیکھیں کہ روز کوئی مسئلے مسائل کے فون میرے پاس آتے ہیں، مشکلات کے، پریشانیوں کے، کس کی کسی طرح کی ہیں، کسی کی کسی طرح کی ہیں. تو یہ سب آزمائشیں ہیں، آزمائش آتی ہے. ہم دیکھتے ہیں ہر طرف کوئی نہ کوئی تکلیف میں ہے، ہم کہتے ہیں پھر کیا یہ زندگی ہے، تکلیفیں ہی تکلیفیں. تو یہ تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے جو پہلے لوگوں کے اوپر گزری ہیں. اللہ تعالیٰ یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں بھیج کے ہمیں آزما لیتا ہے. کس کو آج تک آروں سے چیرا گیا اور کس کو موت کے گھاٹ اتارا گیا. اور دیکھ لیں، حضرت سمیہ کا قصہ دیکھ لیں، حضرت عمار، ان کی فیملی کے اوپر جتنی بڑی مشکل آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے تھے تو کہتے تھے اے آل یاسر صبر کرو، اے آل یاسر صبر کرو. اتنی مشکل آئی، حضرت عمار خود بھی اور ان کے والد کو بھی اور ان کی والدہ کو بھی جکڑا ہوا ہوتا تھا رسیوں میں، اور ان کے اوپر اتنا ٹارچر کیا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اے اللہ آل یاسر کی مغفرت فرما، اور تو نے ان کی مغفرت ضرور کر دی. نہیں، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یعنی صبر اور اس کا حوصلہ دیتے تھے. اور دیکھیں ایک عورت کے لیے اذیت اور ٹارچر برداشت کرنا کتنا مشکل ہے. اور ابو جہل نے حضرت سمیہ کے تو دونوں ٹانگیں، ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دی اور ایک ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ لی، اور دونوں اونٹوں کو اپوزٹ ڈائریکشن میں چلانے لگا. اور سوچیں کہ یہ کس قدر تکلیف دہ چیز ہے. اور پھر ایک نیزہ اٹھایا اور ان کی شرمگاہ میں مار دیا جس سے وہ شہید ہوئی تھی. یہ پہلی شہید ہیں اسلام میں. تو انہوں نے تو ایسے ایسے حالات دیکھے. ان کو پانی میں غوطہ دیا جاتا تھا، جیسے آج کل مجرموں کو دیا جاتا ہے نا، تو حضرت عمار کو اس طرح پکڑ کے پانی میں ان کو غوطے دیے جاتے تھے. اور کہا جاتا تھا یہ فلاں فلاں باتیں بولو. تو ایزی نہیں ہے یہ راستہ، ایسے ہی نہیں جنت مل جاتی. اللہ کی جنت کوئی مفت نہیں ہے کہ آپ آرام کرتے رہیں، کچھ بھی نہ کریں اور بس جنتیں ہمارے لیے ہو جائیں. یہ تو بڑے مزے کی بات ہے بھائی، اور بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو یہی نہیں بڑا احسان ہم نے کیا، اب جنت مل جانی چاہیے ہمیں. اور ذرا سی بھی قربانی دینے کو تیار نہیں، ٹاس سے مس ہونے کو تیار نہیں، زندگی کے اندر کوئی محنت کرنے کو تیار نہیں. حتیٰ کہ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ دین کو سیکھنے کے لیے جو تھوڑی بہت محنت کرنی پڑے اس تک کو تیار نہیں ہے. اس کے لیے اتنی محنتیں کرنی پڑتی ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا ہم احسان کر رہے ہیں کہ اگر ہم تھوڑا بہت سیکھ رہے ہیں نا تو ہم نے کتنی بڑی قربانی دے دی دین کے لیے. وہ ہمارے ذہن میں تو پتہ نہیں کیا ہے کہ ہم کیا بڑا کارنامہ کر رہے ہیں. ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो हमने कुछ नहीं किया है। तो देखें, इस चीज को जहन से निकाल दें कि ये दुनिया जन्नत है, ठीक है, जन्नत वही है जो अल्लाह के पास है। यहाँ पे ना जन्नत ढूंढे ना ये जन्नत है। जब आप जन्नत ढूंढने लगते हैं ना इस दुनिया में तो ज़रूर मायूस होते हैं। ये जन्नत नहीं है और ना ये बन सकती है जन्नत। तो ना कोशिश करें इसको जन्नत बनाने की और ना ही इसमें जन्नत को तलाश करें। यहाँ पे मुश्किलात आएंगी, यहाँ पे मुसीबतें भी आएंगी, यहाँ पे परेशानियाँ भी आएंगी, तरह तरह से आजमाया जाएगा और अल्लाह ताला चेक करेगा कि अब कितना ईमान है इसमें। क्योंकि हमारे ईमान ही छोटे छोटे हैं ना, तो इसलिए हमारी भी वो इम्तिहान भी छोटे छोटे हैं। उनके इम्तिहान इतने बड़े थे कि सुभान अल्लाह, क्या बात है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, वाकई वो इस काबिल हैं कि वो अल्लाह के खलील बन सके। कि वो देखें सुभान अल्लाह, 89 ईयर्स की एज में उनको बेटा मिलता है, या शायद 87 ईयर्स की एज में उनको बेटा मिलता है, इकलौता बेटा है। और 100 साल के बूढ़े को जब हुक्म हो जाता है कि इस बेटे को ज़िबा कर दो, तो एक चूँ चरा नहीं है और लेके चल पड़े बेटे को ज़िबा करने के लिए। तो कैसी कैसी आजमाइशें आई। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि ये बहुत बड़ी आजमाइश थी, जिसको अल्लाह ताला फरमा दें तो कितनी बड़ी आजमाइश। बनी इसराइल को देखें, उनके बेटों को ज़िबा किया जाता रहा, न्यू बॉर्न्स को, कितनी बड़ी आजमाइश थी, जिसको अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया ये बला उन आदीम है, बहुत बड़ी आजमाइश। तो खुशफहमियों से निकलें प्लीज, मुसलमान जागें, ये दुनिया में ऐश करने के लिए नहीं आए। ये सब हालात आएंगे, उनके अंदर साबित कदम रहना, दीन को थामे रखना। यस अलून कमादा यूं फ़िकून, वो सवाल करते हैं क्या कुछ खर्च करें हम। जब सहाबा कराम को पता चला ना कि तो बार बार कुरान पाक में आ रहा है कि खर्च करो खर्च करो खर्च करो, तो अब उनके जहन में देखे, चूंकि वो हमारी तरह थोड़ी थे कि बस आयतें पढ़ ली और चलो जी क्लास ख़त्म हो गई, वो उन्होंने उनको उस चीज़ों को प्रैक्टिकली करना होता था। तो आप जहन में जाहिर है एक फितरी सा सवाल आता है कि क्या खर्च करें, यानी किन लोगों को हम दें, कि क्या कुछ किन के ऊपर हम खर्च करें और क्या खर्च करें, वो तो आगे आएगा आज के ही सबक में इंशाल्लाह। तो 5 लोगों का यहाँ पे जिक्र आया कि इनके ऊपर आप खर्च करें। कुल, कह दीजिए, मा अनफक्तुम मिन खैरिन, जो भी तुम खैर में से खर्च करते हो, यानी खैर किसको कहा गया, माल को, माल में से तुम जो भी खर्च करते हो तो वो क्या है, फलिल वालिदैनी, तो वो किस किस के लिए, वालिदैन के लिए, और किसके लिए। सबसे पहले जिक्र वालिदैन का क्यों आया, इसके इसलिए कि वालिदैन का हक सबसे पहले है, इब्तदा उनसे की गई। अच्छा, अपने आप पे ना खर्च करें, नहीं, अपने आप पे भी खर्च करें, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी ज़ात से इब्तदा कर, इससे बच जाने वाले जो बच जाए उस पर खर्च, उसको खर्च कर फिर अल्लाह के रास्ते में, यानी पहले अपनी ज़ात पे इंसान खर्च करे फिर और लोगों के ऊपर खर्च करें। तो हदीस कुदसी में जैसे है कि खर्च करो मैं भी तुम पर खर्च करूँगा, अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम खर्च करो तो मैं तुम पे खर्च करूँगा, यानी अगर तुम मेरे रास्ते में दोगे तो मैं भी तुम पे खर्च करूँगा। और सोच लें, हमारा तो पैसा ख़त्म हो जाएगा, माल ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह के ख़जाने तो कभी ख़त्म नहीं होने वाले, तो जब वो खर्च करने लगेगा तो वो कैसा खर्च करेगा। तो सबसे पहले अपने वालदैन को, फिर उसके बाद करीबी रिश्तेदारों को। करीबी रिश्तेदारों पे खर्च करने से क्या फ़ायदा होगा, मोहब्बत बढ़ेगी उनके साथ, बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, टाई स्ट्रांग होंगे आपके। तो अच्छा, आप ये भी देख लें कि सुभान अल्लाह, जब हम अपने वालदैन के ऊपर खर्च करते हैं, हम इसी आयत को याद रखते हुए कि अल्लाह का हुक्म है पे कि इनके ऊपर खर्च किया जाए, तो इस पे भी मुझे अजर मिलेगा। हम किसको सोचते हैं अजर मिलेगा, जिस वक्त हम किसी मस्जिद में डोनेशन देते हैं, ठीक है, वो भी इनफाकवी सबील लाई है, क्योंकि आप दीन के इशात के लिए दीन के एक मरकज़ पे खर्च करते हैं। लेकिन अक्सर यानी ऐसी जगहों पे हमारा जहन जाता है, किसी हॉस्पिटल को दे दिया, किसी यतीम खाने को दे दिया, कि कोई गरीब को दे दिया, तो हम सोचते हैं कि ये हमारा सदका हो गया, ये हमने बड़ा नेकी का काम कर लिया। लेकिन हम कभी पेरेंट्स पे खर्च करने को सोचते हैं कि ये भी अल्लाह के रास्ते का खर्च है? हाँ, ये भी नेकी है, इनको देना भी एक सदका है। देखिए यहाँ पे इस्लाम कैसे इंसान को वालदैन के ऊपर खर्च करने के ऊपर भी अजर देता, सुभान अल्लाह। तो जब आप अपने पेरेंट्स को नेक्स्ट टाइम कोई भी चीज़ देंगे ना, तो आप इसको याद रखिएगा कि जो भी खुद तुम खर्च करोगे तो अल्लाह ताला ने तो खुद फरमाया वालदैन पे खर्च करो, तो ये भी मेरी एक नेकी है। वल अकराबीना, और ये भी एक सदका है। अच्छा, हम सदका क्या समझते हैं? बस यो कोई गया गुजरा ही बेचारा हो जाए, बिल्कुल ही सड़क पे बैठा हो, तो फिर हम उसको जो देंगे ना वो सदका। नहीं, सदका हर एक नेकी सदका ही है, मुस्कुरा देना भी एक सदका है। चले थोड़ी देर के लिए आप सब मुस्कुराएं इस वक्त, ये भी एक सदका है, किसी की तरफ देख के भी मुस्कुरा लें, एक सदका है आपके लिए। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने देखिए कितनी आसान आसान ये नेकियां लिखी हैं ना, हमारे लिए रखी हुई हैं, कि वालदैन को दिया उसके ऊपर भी आपको अजर मिले, अकराबीन को दिया करीबी रिश्तेदारों को। लेकिन हम अक्सर करीबी रिश्तेदारों को कब देते हैं? वो हमें देंगे तो हम उनको देंगे ना, उसने तो कभी मुझे दिया ही नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा देने का इनको? अभी उन्होंने दिया है हमें, मैंने लास्ट टाइम उसको ये दिया था, उसने कुछ भी नहीं दिया मुझे, तो मैं क्यों दूँ? आप इसलिए दें क्योंकि ये एक सदका है, आपने तो नेकी कमानी है ना, तो अकराबीन को दें, करीबी रिश्तेदारों को। अब उसमें आप देख लें सारे करीबी रिश्तेदार। अच्छा, फिर एक और बात, वालदैन का हक है। कभी कभी हम अपने वालदैन के लिए तो सोचते हैं, लेकिन जो हमारे घर में कमाई करने वाले मर्द हैं उनके भी तो वालदैन है ना, अगर वो अपने वालदैन पर खर्च करते हैं तो उसको भी समझें कि ये भी एक नेकी कमा रहे हैं, उस पर हमें तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वल यतामा, और यतीमों के लिए खर्च करें। और यतीम की एज क्या होती है? लड़का है तो बालिग होने पे वो यतीमी से निकल जाएगा, और लड़की है तो जैसे कि लास्ट टाइम किसी ने क्वेश्चन किया था कि कई जगह कहा जाता है यतीम बच्ची है तो इसकी शादी के लिए दें, तो अब वो यतीम तो ना रही क्योंकि वो बालिग हो गई। देखें, लड़कियाँ चूँकि वैसे ही वीक होती है ना, औरत वैसे ही वीक होती है, तो अगर वो बालिग हो भी गई है तो उसके बाद भी उसका ख्याल रखना चाहिए। वो यतीम इसीलिए कहला रही क्योंकि वो पहले तो यतीम ही थी ना, अब वो यतीमी के हुक्म से तो निकल गई, मगर वैसे तो उसका कोई सरपरस्त नहीं है ना, कोई वाली वारिस नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उसको यतीम ही कंसिडर करके उनके साथ भी अच्छाई की जाए, और मसाकीन मिसकीनों को। अच्छा, यहाँ पे हो सकता है आपके जहन में आए कि बीवी बच्चों का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए कि इंसान उनके ऊपर तो खर्च करता ही है, शौक से खर्च करता है। बस शायद बीवियों को ये शिकायत हो कि हमारे शौहर तो नहीं हम पे खर्च करते, तो देखें अकराबीन में फिर करीबी रिश्तेदारों का आप जहाँ पे लिखें तो फिर वहाँ पे बीवी भी तो उसमें आ गई ना, उससे ज़्यादा करीबी रिश्ता क्या होगा कि वो उसको अल्लाह ताला ने लिबास ही फरमा दिया। तो सबसे करीबी रिश्ता तो वही हो गया। तो वह अपने सबील, और मुसाफिरों के लिए, मुसाफिर चाहे अमीर भी हो लेकिन वो जब सफ़र में है तो वो ज़रूरतमंद है। देखें सुभान अल्लाह, इस्लाम हमारा दीन इतना प्यारा है ना, वो इंसान को सेल्फिश नहीं बनाता, सेल्फलेस बना देता है ना, ये इसका भी ख्याल, उसका भी ख्याल, उसका भी ख्याल। इसीलिए फरमाया वमा तफ़अलू मिन खैरिन फ़इन्ना अल्लाह बिही अलीम, जो भी तुम भलाई में से करोगे ना, नेकी में से करोगे, अल्लाह ताला उसको जानने वाला है। यानी इन लोगों का तो बता दिया गया, इसके अलावा भी अब आपको कोई मिले, नहीं इसका तो कोई नहीं है जिक्र, इसलिए मैंने इसको तो नहीं देना। नहीं, आप ये ना सोचें, आप ये सोचें कहीं पर भी आपको नज़र आता है ना कि ये एक जगह है जहाँ पर मैं खर्च कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत है, ये ज़रूरतमंद है, तो वहाँ पे खर्च करेंगे। जो भी यानी आपने नेकी की ना, अल्लाह ताला उसको जानने वाला। अब हम इतने ना स्पेसिफिक हो जाएं कि बस इसको तो मैं दूंगी, इसके अलावा नहीं मैंने किसी को देना, नहीं। आप जहाँ पे भी नेकी का कोई मौका देखते हैं वहाँ खर्च कर दें। अच्छा, जब किसी को देने का मौका आता है हम बाज़ दफ़ा इतनी तहकीक करते हैं, इतनी बाल की खाल उतारते हैं कि अगर कोई ज़रा सा दाल रोटी भी ठीक से खा रहा हो ना, तो हम कहते हैं इसको क्या ज़रूरत है, इसके घर में फ्रिज भी है, इसके घर में ये भी है, तो यहाँ पे मैंने नहीं देना। यानी हम ढूंढते हैं कोई ऐसा बंदा जो बिल्कुल बेचारा मिट्टी में रुल गया हो। ठीक है, जब किसी और के पैसों का आपको अमीन बनाया जाए ना, मिसाल के तौर पे कि मसलन मेरे पास आप 10 लोग अगर पैसे जमा कराते हैं तो फिर मैं ज़रूर तहकीक करूँ, क्योंकि मेरे पास लोगों की अमानत है, तो फिर मैं ज़ाहिर है देख के तहकीक करके खर्च करूँ। लेकिन जब मैंने खुद खर्च करने हो तब मुझे ऐसे नहीं ज़रूरत कि मैं इतनी बाल की खाल उतारूँ कि बिल्कुल ही एक बंदे को जब तक कि वो बिल्कुल हर चीज़ से फारिग ना हो जाए, ना उसके पास रोटी हो ना उसके पास कपड़ा हो, तो तब ही मैंने इसको देना है। अगर अल्लाह ताला भी हमें उस वक़्त देने लगे तो फिर हमारा क्या हाल हो बताएं। अगर अल्लाह ताला भी इस चीज़ का वेट करे कि जब तक ये बिल्कुल सड़क पे ना आ जाए मैं इनको नहीं दूंगा, तो हमारा क्या बने बताएं, सोचें ज़रा। और हम लोगों के लिए इस तरह से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा होगा तो फिर मैं किसी को दूंगी। क्यों, मिस्कीन तो वो है जो हैंड टू माउथ है, उसके पास है इतना कि वो उसके घर में उसके दाल रोटी तो चल ही रही है, लेकिन इतना नहीं है कि वो इससे ज़्यादा कुछ कर सके। तो अपने लिए तो हम लग्जरीज तक पहुंच जाते हैं और उसको भी ज़रूरतें समझते हैं, और दूसरे के लिए हम क्या करते हैं, उसकी ज़रूरत को भी कहते हैं कि ये भी ना होती तो फिर मैं इसको देती। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने बता दिया है कहाँ कहाँ खर्च करें। अब हम भी देख लें, अपना जायज़ा लें, मैं कहाँ कहाँ खर्च करती हूँ। जब मेरे पास पैसे जमा होते हैं, आपके पास कुछ पॉकेट मनी जमा हो चुका है, या आपने कोई कमेटी डाली, आपकी कमेटी निकली है, आपका क्या थिंकिंग क्या है कि मैंने किस किस जगह खर्च करना है, किधर का ख्याल आता है आपको सबसे पहले, ज़रा इसको जायज़ा लीजिएगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने तो फरमाया यहाँ पे खर्च करें, मेरे खर्च किधर होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ तक तिलावत सुनते हैं, फिर आगे चूँकि किताल की आयात आ रही है फिर वो इंशाअल्लाह ताला देखेंगे।
مثل